ओम शांति। एक छोटी और सुंदर बात पे चिंतन करेंगे सभी। ये मैं केवल एक लाइन बोलता हूं, फिर हम क्लास करेंगे। चिंतन है कि सभी ने त्याग किया है, किया है सबका त्याग है, बहुत बड़ा। आप लोगों को पता आपका त्याग तुम्हारा है क्या है? भाग्य है, त्याग नहीं है, नहीं है, इसीलिए आपसे पूछ रहा हूं। अपने त्याग का पता होना चाहिए। सफेद कपड़े पहनना भी त्याग है, नहीं अच्छे लगते हैं? तो त्याग हम सब ने किया है, मनोविकारों का त्याग सबसे बड़ा त्याग होता है। तो हमारा त्याग श्रेष्ठ भाग्य दिलाए। त्याग किया है तो बाबा से सर्वश्रेष्ठ भाग्य प्राप्त करेंगे, और वो होता है अपनी योग से, अपनी साधनाओं से। बाबा की संडे को सबने मुरली सुनी है, याद है कौन सी थी? तो मैं तीन बातों में पहले इस मुरली को बांट दूं। पहले तो बाबा राज अधिकारियों की दरबार देख रहे थे, जिसमें एक सुंदर बात देखी बाबा ने, उस पर आज हम विशेष चर्चा करेंगे। जो राज्य अधिकारी हैं, वो नम्रता और स्वमानधारी हैं, नम्रता से भरपूर और स्वमानधारी हैं, याद है? दूसरी लाइन थी ये, अति निर्माण और ऊंचा स्वमान, ये दो बातें। फिर ये एक बात हुई पहली। दूसरी बात, प्रकृति के पांचों तत्व कैसे क्या करेंगे, दासी बन जाएंगे, सेवा करेंगे, पालना करेंगे हमारी। तीसरा, माया के पांचों को परिवर्तन कर दो। तीन बातें, माया को भी सेवाधारी बना दो, माया भी दासी बन जाएगी। इसकी यादगार कौन सी है बताओ? आपको याद नहीं आएगा क्योंकि इस मुरली में नहीं है। विष्णु से सैया पर, किसकी से सैया? पांचों विकार, पांच फन वाला ही नाग दिखाते हैं, ज्यादा नहीं। तो पांचों विकारों को जीत लिया, तो जिनको जीत लिया वो दासी बन गए, दास बन गए, अधीन हो गए। राजाओं का भी जब युद्ध होता था, जो जीत लेता था तो जो हारने वाला है वो उसके अधीन। तो काम को बदलना है, शुभ भावनाएं श्रेष्ठ भावनाओं में, काम को कामना में बदलना है, श्रेष्ठ कामनाएं। क्रोध को, क्रोध अग्नि को योग अग्नि में, लोभ को अच्छा लोभ, प्योर लोभ, मुझे बाप समान बनना है, और आगे अच्छी बात करेंगे। मोह को बाप दादा से मोह, बहुत प्यार, और अहंकार को स्वमान में, स्वमान में देही अभिमानी स्थिति में, इनमें हमें बदल देना है। काम, शुभ कामनाओं में, सबके प्रति श्रेष्ठ कामनाएं हो जाएं हमारे मन में, बुरी दृष्टि, बुरी वृत्ति, बुरी कामनाएं खत्म। काम में बुरी कामनाएं होती हैं मन में, वो शुभ कामनाओं में बदल गया। सबका कल्याण हो, सब सुखी हो जाएं, विश्व कल्याण की भावना जागृत हो गई। क्रोध अग्नि योग अग्नि में, अग्नि है दोनों, एक मनुष्य को जलाती है, दूसरी पापों को और विकारों को जलाती है। तो योग अग्नि में बदल जाए, क्योंकि क्रोध भी बुरा है। माताओं को किन पर क्रोध आता है? बच्चों पर। क्यों बता रहा हूँ? आज एक कोई आए कर्नल थे मिलने, तो उसकी पत्नी वो बड़ा सुनती रहती है क्लासेस, कहा मुझे गुस्सा बड़ा आता है। दो बच्चे थे, किन पे? मुझे पता तो था किन पे आता है, कहा दुनिया में केवल इन दो पर और किसी पर नहीं, केवल दो पर। वो वहीं बैठे थे, एक आठवीं क्लास में एक चौथी क्लास में। मैंने उसको बताया, तुम्हें गुस्सा पता क्यों आता है? बताओ माताएं, राज बताओ, गहरा राज। नहीं 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 नहीं, वो तो ठीक है, वो मानते नहीं। मोटा कारण तो यही है, उनपे अधिकार है। पति कर्नल है, उस पर गुस्सा नहीं कर सकती, दो लगाएगा, था भी लंबा चौड़ा मूछो वाला। तो बच्चों पर अधिकार है, तो इसलिए अधिकार से उन पर गुस्सा आता। किसी और के बच्चों पे आएगा नहीं, अपनों पे अधिकार। इस अधिकार को किस में बदल दें? मैंने सीधी बात बताई, क्योंकि वो बहुत ज्ञान में तो ऐसी वैसी नहीं थी। मैंने कहा यही सोचो, ये बाबा के बच्चे हैं, मेरे हैं वो तो हैं, पर बाबा के हैं। कहा मैं शांत हो जाऊंगी तो ये मानेंगे नहीं मेरी बात। ये एक नया संकल्प रहता है, बात तो है, कुछ कहेंगे नहीं तो बच्चे लड़ते भी रहेंगे आपस में, पढ़ेंगे नहीं, टीवी नेट देखते रहेंगे, मानेंगे नहीं। मैंने उसको क्रोध को जीतने की सिंपल विधि बताई, सवेरे उठ के 21 बार याद करना, मैं क्रोध मुक्त हूँ, शांत हूँ, 21 बार। जिनको भी क्रोध की अग्नि को बुझाना है वे ये अभ्यास किया करें। 21 दिन मैंने उनको कहा, आपको ज्यादा दिन करना पड़े तो 7 बार रोज कर लो, मैं आत्मा क्रोध मुक्त हूँ, शांत स्वरूप हूँ, फीलिंग हो मैं हूँ। तो हम इस तरह अपने अधिकारों को थोड़ा ढीला करें। सोचें, बच्चों पर क्रोध कर रहे, ये बाबा के बच्चे हैं, बाबा को कैसे लगेगा, मेरे बच्चों को मार पीट रही है ये, तो वो भी क्रोध करेगा हम पे। और भगवान क्रोध कर दे तो करता नहीं है, वो प्यार का सागर है, फिर भी अगर कर दे तो धर्मराज बन के करेगा ना, फिर मुश्किल होगी। लोभ, बोलो, लोभ को शुद्ध लोभ में बदलना है। मुझे बाप समान बनना हो तो बड़ी बात हो गई, थोड़ा छोटे से चलें कि मुझे रोज मुरली सुननी है, ये लोभ। मुझे ज्ञान रत्नों से झोलियां भरनी है, ये लोभ। मुझे अमृत वेला छोड़ना नहीं है, ये लोभ। मुझे बाबा से सब कुछ लेना है, ये लोभ। बाबा से शक्तियां लेनी है, खजाने लेने हैं, उसके प्यार को पाना है, सब लोभ। ये करते करते बाप समान बन जाएंगे। मोह बाबा में प्यार बहुत ज्यादा ऑटोमेटिक है। देखिए, प्यार बदलता है ना, बाबा से प्यार बढ़ता जाएगा, देहधारियों का मोह हल्का होता जाएगा, आप ही होगा। क्योंकि मोह ऐसी चीज है, ये कोई मोटी चीज तो है नहीं जिसको हटा दिया जाए। मोह दिखता भी नहीं, जैसे आजकल शुगर को लोग कहते हैं ना, स्वीट किलर है, स्लो किलर, धीरे धीरे मारता है, जल्दी कुछ नहीं करता शुगर, धीरे धीरे अंगों को खराब करेगा। मोह भी स्वीट माया है, बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन बुद्धि योग तोड़ देती है। बुद्धि योग तो नहीं रहेगा ना बाबा से। अहंकार को, देह अहंकार को, देह अभिमानी स्थिति में, स्वमानधारी होने की स्थिति में बदलना है। तो जितना जितना हमारा स्वमान अच्छा होता जाएगा, अभिमान आप ही खत्म होता जाएगा, हम निर्माण चित्त नम्र चित्त बनते जाएंगे, ऑटोमेटिकली होगा ये। स्वमान बढ़ेगा, अभिमान घटेगा, इसलिए हमें स्वमानधारी बनना है। आज हम इस पर विशेष चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ही रिपीट कर लें थोड़ा सा। हवा क्या करेगी? पंखा तो चलाएगी हमें, पर गर्मी तो है ही नहीं ना, पंखा क्या करेंगे? साज बजाएगी, पत्ते टकराएंगे, टहनियां टकराएंगी, सुंदर साज बन जाएगा, और हवा बहुत सुख देगी, ऐसी जिसको आजकल कहते हैं मीठी मीठी हवा, और सुगंधित हवा होगी। पानी में भी त्रिफुलेल होगा, पानी जड़ी बूटियों से आएगी, गंगा का उदाहरण दिया बाबा ने। पानी बहुत ताकतवर होगा, इसलिए पानी की नदियों को ही दूध की नदियां कह दिया गया। तो हवा बहुत सुख देगी, हवा है भी बहुत जरूरी शरीर के लिए, और देखो बदबूदार हवा जाए अंदर तो बीमारियां पैदा करती है ना। शुद्ध, बिल्कुल एब्सोल्युटली प्योर, उसकी प्योरिटी का तो कोई वर्णन ही नहीं हवा की। वो जब अंदर जाएगी तो अंदर कुछ वैसे भी नहीं होगा, कंचन काया बनी रहेगी। पहाड़ कैसे होंगे? डिजाइंड, जैसे हमारे यहाँ टोड रोक है ना, मेढक जैसी, तो कोई होगी हंस जैसी, कोई गरुड़ जैसी, पंछी उड़ रहा है कोई पहाड़ी ऐसी, विमान जैसी, दोनों पंखों पर बैठा करेंगे देवता, आनंद मनाएंगे। तो डिजाइंड फूलों जैसी सुंदर पहाड़ियां, कौन बनाएगा इनको? कौन बनाएगा बताओ? नेचुरल कैलेमिटीज से, और इसमें एक बड़ी सूक्ष्म गति है, ठीक है, नेचुरल कैलेमिटीज से तो विध्वंस होगा। बाबा ने कहा थोड़ा बहुत हाथ से भी करना पड़ेगा, थोड़ा लगाना पड़ेगा। मान लो पंख हैं और वो थोड़े से कहीं ऐसे वैसे हैं, तो जरा छेनी हथौड़ी से ठीक कर दिया जाएगा। लेकिन ये बहुत ही गहन गति है, ध्यान से सुन लेंगे। जैसे वाइब्रेशंस आत्मा के होते हैं, उन वाइब्रेशंस के अनुसार प्रकृति रूप धारण कर लेती है। फूलों में सुगंध, आप प्रकृति की अगर रचना देखें जहां तहां, तो कोई समझ नहीं सकता कि इनका निर्माण हुआ कैसे। पत्तियों में सुंदर कलर भरे हुए हैं, फूल होते हैं हमारे यहाँ, उनकी पत्तियां कैसे सुंदर कलर, तुमने भरे हैं क्या? ये बैठा है ना आर्टिस्ट, भर रहे हैं। आप हैरान होंगे उनके फूलों में डबल ट्रिपल कलर, किसने भरे, किसने डिजाइन किया? लोग सोचते हैं ब्रह्मा जी ने कभी किया था, तो ब्रह्मा जी ने सारे फूल तो नहीं बनाए थे, अगर बनाए होंगे थोड़े बहुत, ये सारे बाद में कहां से बने, ब्रह्मा जी ने तो बनाए नहीं। ये आत्मा और प्रकृति का सुंदर मिलन इस संसार की रचना करता है, देह की भी रचना। अब देह देखो आप, जितने शरीर हैं, भिन्न भिन्न तरह के हैं ना शरीर, किसी की आंखें कैसी, नाक कैसी, कान कैसे, दांत कैसे, सबका अलग अलग है ना। बॉडी का अंग, उंगलियां अलग, हर एक की अलग, नाखून भी, ये बड़ी गुई रहस्य है। हर चीज अंदर की रचना में भी, एक व्यक्ति था हमारे यहाँ ज्ञान में आता था, अब तो नहीं रहा साइंटिस्ट, मुझे पता भी नहीं है या नहीं, बेचारा बीमार था। उसका जो पेट है ना, सारा सिस्टम उल्टा, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, बड़ी मुश्किल थी उसको, हजम नहीं होता था कुछ भी। तो देखो किसने बना दिया? बाबा ने नहीं बनाया। माताएं तो भावनाओं से कहती बाबा ने बना दिया। नहीं, अब मैं एक उदाहरण देता हूं जो मैंने क्लासेज में कई बार सुनाया है, आपको उससे बहुत सारे रहस्य स्पष्ट होंगे। यहाँ सुनाया या नहीं सुनाया, पंजाब की घटना है। एक माता के गर्भ में बच्चे की पोजीशन उल्टी थी, जैसा नॉर्मल होता है उससे उल्टी। अभी परेशान डॉक्टर भी, भाई उल्टा कैसा बच्चा, ऐसा तो केस कभी देखा नहीं। ऑपरेशन होगा, 10-12 दिन का टाइम दिया गया। मां की मृत्यु या बच्चे की मृत्यु, एक की मृत्यु तय। अब वो बेचारे भाग दौड़ कर रहे, कहीं से वो पहुंच गए। एक सोशल वर्कर बहन है वहां, जो ज्ञान में भी है 5-6 साल से, उसके पास पहुंच गए। सोशल वर्कर थी, सबकी मदद करती थी, भाई इससे कुछ पूछो। तो उसने उनको राय दी, वो ये सब सुनती है, कि आप ये जो बच्चा है ना गर्भ में, ये नाराज है आपसे, उसको टच हुआ, इससे क्षमा याचना करो। वो नाराज है, तुमने उसको सताया है, वो तुम्हारे घर में जन्म ही नहीं लेना चाहता, अब उससे तुम क्षमा याचना करो। मां को कहा, मां ने शुरू किया, हे आत्मा तुम हमारे घर में जन्म लो, हम तुम्हें बहुत प्यार करेंगे, हमने तुम्हें जो कष्ट दिया उसके लिए मैं तुमसे क्षमा चाहती हूँ, आप मुझे क्षमा दान दो। वो ऐसे बात करने लगी, क्या हुआ होगा बताओ। अब इस रहस्य से आप बहुत रहस्य समझ जाएंगे। उसने रोज जब तक सोनोग्राफी हो क्षमा याचना की। सुना सकते हैं आप ये उदाहरण, सोनोग्राफी हुई 10-12 दिन का ही बात थी, देखा तो बच्चे की पोजीशन ठीक हो गई है, जन्म हुआ सब ठीक ठाक, उसको याद था इस बच्चे को बहुत प्यार देना, माँ तो बच्चे को प्यार देगी, वो तो पूर्व जन्मों की बात थी। अब समझ लें आप इससे मनुष्य के वाइब्रेशंस कैसे काम करते हैं। अब उन्होंने पूर्व जन्म में उसको सताया था, अब वो बच्चा गर्भ में है, आत्मा उसको याद कैसे है वो चीज, सोच के देखना है सबको। आत्मा कैसे सब कुछ साथ ले जाती है, मेमोरीज उसके सबकॉन्शियस माइंड में, उसके मन में वो मेमोरीज, वो स्मृतियां समाई रहती है अंदर, उनके वाइब्रेशंस फैलते हैं। अब उसको सब याद नहीं है, लेकिन उसके वाइब्रेशंस फैलते हैं, उससे शरीर की रचना होती है। तो गर्भ में ही मुख्य जो आकृति है शरीरों की, ब्रेन की रचना आत्मा के वाइब्रेशन से होती है। देखो आत्मा लगभग 4.5 मास में प्रवेश करती है ना गर्भ में, तब तक बच्चा का एक पिंड जैसा होता है। अंगों का निर्माण मुख्य रूप से ब्रेन का निर्माण, हार्ट का निर्माण उसके बाद होता है। अभी किसी एक बच्चे को टांग ही नहीं है, एक वीक है, कैसे हुआ। माँ बाप तो बिल्कुल ठीक ठाक हैं, बाबा ने किया। माता जी के पास तो एक ही उत्तर है, बाबा ने। माता जी बाबा टांग नहीं काटता किसी की। देखो माताओं की भावना, सब कुछ बाबा करता है, सुख दुख सब वही देता है। तो सोच लो सभी, ये वाइब्रेशंस के द्वारा किस तरह काम होता है। क्लियर है ना, कोई बड़ा डॉक्टर रिसर्च स्कॉलर हो वो इस पे वर्क कर सकता है कि वाइब्रेशंस से गर्भ में कैसे शरीर की भिन्न भिन्न तरह से रचना होती है। 100 केस लेकर वो इस पर काम कर सकता है, केवल गर्भ के बच्चे पर। ऐसे ही सतयुग में या सदा ही जो मनुष्य आत्माओं के वाइब्रेशंस है, मां देवताओं के वाइब्रेशंस, उस आधार पे प्रकृति रूप धारण करती है। बहुत गुह्य गति हो सकती है इसमें, मोटे रूप से इतना ही कहा जाएगा। तो सतयुग में इस तरह प्रकृति के सुंदर स्वरूप होंगे, फूलों में भी सुगंध होगी। आजकल सुगंध लगभग चली गई है, किसी किसी गुलाब के फूल में अच्छी खुशबू होती है, बाकी तो सब दिखावे के रह गए हैं। सुगंधित फूल तो जैसे लोप ही हो गए हैं, दिखता है ना, लोप हो गए। रात की रानी है, ठीक है भाई, रात का दिन का राजा, दिन का राजा नहीं रहा गुलाब है। तो रात की रानी में हमारे यहाँ गेट पर है ना, तो बहुत अच्छी सुगंध रहती है। तो सतयुग में फल कितने टेस्टी होंगे बाबा ने बताया, जैसा टेस्ट चाहिए। आजकल तो सेव में भी टेस्ट नहीं रहा, आप अगर कभी हिमाचल जाओ और वहां के ताजे सेव खा लो तो आपको पता चलेगा सेव क्या चीज होती है। दो खाने से ही मन तृप्त होता है, जूसीले जूस भरा हुआ। तो सतयुग में मनुष्य क्योंकि देवत्व को प्राप्त है, उसके वाइब्रेशंस पूर्णतः पॉजिटिव प्योर सुखदायी सतोप्रधान है, तो सब कुछ वैसा ही स्वरूप ले लेता है। तो बाबा ने पांचों का वर्णन किया, धरती क्या देगी, आकाश क्या बन जाएगा, राजपथ बन जाएगा, 8 साल का बच्चा भी विमान चलाएगा, एक्सीडेंट तो वहां होगा ही नहीं। तो अब हम आ जाएं स्वमानधारी स्थिति पर, हमें अपने स्वमान को बढ़ाते चलना है। एक तो अभिमान दूर होगा, दूसरा इंपॉर्टेंट बात, हमारे विचारों की महानता दिनों दिन बढ़ने लगेगी। छोटे विचार तेरे मेरे के विचार समाप्त होने लगेंगे। जो लोग तेरे मेरे में झगड़ रहे हैं समझ ले वो स्वमानधारी नहीं है। जिनकी हद की भावनाएं हो गई हैं वे स्वमानधारी नहीं है। जो एक दूसरे से बुरा व्यवहार कर रहे हैं, कोई किसी को सता रहा है, कोई किसी को कस दे रहा है, आजकल ये लैंग्वेज कॉमन हो गई है, भाई हमें लोग टॉर्चर बहुत कर रहे हैं, समझ ले वे स्वमानधारी नहीं है। टॉर्चर करते हैं, मैं इसमें एक बात कहता हूँ, छोटी कन्याएं बैठी हैं सब, वो टॉर्चर करे, टॉर्चर समझते हैं ना, सताएं, वो सताएं और हम टॉर्चर्ड हो ही नहीं। तुम गाली देते रहो हम तो मुस्कुराते रहेंगे, पक्का कर दो, ये भी तो हो सकता है या नहीं। दूसरा टॉर्चर कर रहा और हम दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, घर जाने की सोच रहे हैं, वो टॉर्चर करने का उसका साहस बढ़ता जाएगा, आप घर चले गए दूसरे को करेंगे वो नहीं, वो टॉर्चर करें हम मुस्कुराएं, अंदर जाने ही न दें उनकी बातों को, ये हमारी सुंदर धारणा हो। तो हम अपने स्वमान को जितना जितना ऊंचा उठाएंगे, हमारी दृष्टि, हमारा दृष्टिकोण, हमारे एटीट्यूड्स, हमारी भावनाएं महान बनती जाएंगी। बाबा के बहुत सुंदर कई महावाक्य हैं स्वमान पर, मैं वो आपको बता रहा हूं ताकि आपको स्वमान के महत्व का ज्ञान रहे और स्वमान को अपनी मुख्य साधना बना लें सभी। स्वमान में स्थित होना भी योग है। बाबा के तो और पावरफुल शब्द हैं, मैंने नोट किए थे ये सब शब्द 74 में, बहुतों का जन्म नहीं हुआ था तब, यही इसी हॉल में बाबा की मुरली से। स्वमान में स्थित होना ही संपूर्ण बनना है, बहुत गहरा महावाक्य। जिस तरह के स्वमान में हम स्थित होते हैं उसी तरह के वाइब्रेशंस चारों ओर फैलते हैं, वातावरण बनता है। मैं एक महान आत्मा हूं, इस स्वमान में स्थित होने से महानताएं बढ़ती जाएंगी, विचार दृष्टि बड़ी होती जाएगी। जैसे घर में कोई बड़ा व्यक्ति हो, बाकी सब छोटे बच्चे हैं, उन्हें प्यार देना है, उनकी बातों को ज्यादा सोचना नहीं है, बच्चे लड़ेंगे भी, चंचल होंगे, गिरेंगे, उठेंगे, पढ़ेंगे, कतरे हैं ना सब बच्चे, उसकी बातों को ज्यादा माइंड नहीं करना है ना बड़ों को, तो बड़े बड़े हो जाते हैं। स्वमान हमें बड़े बना देता है। बाबा का बहुत अच्छा मास्टर ज्ञान सूर्य के लिए महावाक्य है, तुम मास्टर ज्ञान सूर्य हो, तुम्हारी किरणों से, इस संसार से माया के कीटाणु नष्ट होते हैं। कितनी बड़ी सेवा है। स्वमानधारी होने से क्या क्या होता है, जो बच्चे स्वमान में स्थित रहते हैं, ज्ञान सूर्य की किरणें उनकी छत्र छाया है। आप ही छत्र छाया बनी रहेगी बाबा की किरणों की हमारे सिर पर, स्वमानधारी होने से माया से सुरक्षित रहेंगे। और आने वाले समय में पता चलेगा हम विनाश के अनेक प्रकोपों में भी सुरक्षित हैं। जैसे बाबा ने कहा, उदाहरण दिया है, जैसे आग में कौन सेफ रहे, बिल्ली के बच्चे, पुंगरे ये नहीं समझेंगे, पुंगरे सिंधी शब्द है, आग में बिल्ली के बच्चे सुरक्षित रहे, तुम सभी बाबा के बच्चे विनाश की अग्नि में भी सुरक्षित रहेंगे। कितनी बड़ी गारंटी ले ली भगवान ने। पर रहेंगे कौन, जो स्वमानधारी होंगे। बहुत अच्छा महावाक्य, प्रैक्टिकल नया, जो स्वमान की सीट पर सेट हैं, उनका जिम्मेदार बाप है, और जो अपसेट हैं उनके जिम्मेदार वो आप हैं। बाबा की भाषा भी अच्छी होती है, बाप और आप। स्वमान से और एक सुंदर महावाक्य जो अनेक समस्याओं का हल दिखाता है हमें, जो स्वमान में स्थित हैं, सम्मान उनके पीछे परछाई की तरह आता है। घरों में सबको अनुभव है, ज्ञान में चलने पर कितने लोग विरोध करते हैं। पहले बहुत प्यार करते थे, ज्ञान में चले जैसे बड़ा पाप कर लिया हो, सब विरोधी बन गए, सब गाली देते हैं, कहाँ जाते हो, सवेरे सवेरे उठ के कहाँ चले जाते हो, हम सोते हैं तुम क्यों नहीं सोते, जल्दी क्यों उठते हो, विरोध करते हैं ना। स्वमान में रहने से सबका सम्मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा तो ये विरोध ये अपमान सब समाप्त हो जाएगा। घरों में माताओं को कोई बुरा बोलता हो, समझ लो स्वमानधारी होंगे तो बुरा बोलने वाला भी मित्र बन जाएगा। एक माता ने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की, मुझे अनुभव सुनाया अभी नजदीक में। मैंने माताओं को दो स्वमान दिए थे अपने घर में, इन दो स्वमान का अभ्यास करना, मैं एक महान आत्मा हूँ और मैं इस घर की इस देवी हूँ, इस घर की माना अपने घर की इस देवी हूँ। मुझे बताया, मैंने कुछ ही दिन किया था, मेरा पति कहने लगा हमारा घर तो आजकल मंदिर जैसा लगता है। इस देवी बन गई ना। मैंने कहा उसे कह देना अब तुम इस मंदिर के इस देवता बन जाओ, पुजारी नहीं। तुरंत असर दिखाता है स्वमान, मास्टर सर्व शक्तिवान का स्वमान सबसे पावरफुल है, जो तुरंत काम करेगा। पावरफुल किरणें फैलेंगी चारों ओर, बहुत कुछ होगा उससे, सबसे पावरफुल स्वमान, क्योंकि इससे हम आत्माएं संसार में सबसे अधिक शक्तिशाली बन जाएंगी। ये हमारी सोई हुई शक्तियों को जगा देता है, हमारे डर को खत्म कर देता है, सेंसिटिव नेचर, नाजुक नेचर, फीलिंग की नेचर उसको समाप्त कर देता है। इसलिए बहुत अपने स्वमान को बढ़ाना है, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ, और बढ़ाने का अर्थ होता है इसको स्वीकार करना, मैं हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। मास्टर सर्व शक्तिवान का दूसरा अर्थ है मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। आजकल एक शब्द आया है मुरलियों में, क्योंकि ये स्वमान मुरली में बहुत आता है वरदान में, तो बाप के वर्षे को और सदगुरु के वरदान को यूज करो, था ना, शक्तियों को ऑर्डर दो, शक्तियां तुम्हारे ऑर्डर में चले। उसमें ही था, आज था या कल था? आज था। बाप का वर्षा क्या है? सर्व शक्तियां। वो सर्व शक्तिवान है तो हम मास्टर सर्व शक्तिवान यानी बहुत पावरफुल हैं। ये उसका वर्षा हो गया हमारे लिए। और वरदान बाबा ने सिर पर हाथ रखकर वरदान दे दिया है, मास्टर सर्व शक्तिवान भाव, ये परम सदगुरु का वरदान। तो दोनों चीजें हमें शक्तिशाली बना देती हैं। याद रखना है, सर्व शक्तियां बाप का वर्षा भी है और सदगुरु का वरदान भी है। तो इसको स्वीकार करते चलना है कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। मास्टर सर शक्तिवान को कोई कोई लोग समझते नहीं है, इसको केवल रिपीट करते हैं, फील करेंगे, स्वीकार करेंगे, मैं बहुत बहुत शक्तिशाली हूँ। और अच्छा सोचो, सबसे अधिक शक्तिशाली है शिव बाबा और दूसरा नंबर मेरा, ऐसा संकल्प करो, दूसरा नंबर मेरा, तो हम बहुत शक्तिशाली बनते जाएंगे। कैसे बन जाएंगे ये सोचने से शक्तिशाली? क्योंकि जैसी स्मृति वैसी स्थिति, सिंपल शब्दों में जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। और बाबा के शब्द हैं, जैसी स्मृति वैसी स्थिति बन जाएगी। तो हम सोचते रहेंगे मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, तो शक्तिशाली बनते जाएंगे, निर्भय बनते जाएंगे। और शक्तिशाली आत्मा का लक्षण है, पता भी होना चाहिए। कई लोग गुस्सा भी करते हैं तो सोचते हैं मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, ज्यादा बोलते हैं, सुनाते हैं, किससे डरते नहीं, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। दूसरे भी कहेंगे ये व्यक्ति बड़ा शक्तिशाली है, किससे नहीं डरता, हर एक का सामना कर लेता है। नो, परिस्थिति आ जाए, स्थिति न हिले, यह है शक्तिशाली आत्मा का लक्षण। कोई कुछ बोलता रहे, कोई अपमान करे, हम परेशान न हो, खुशी न खो दें, यह है शक्तिशाली आत्मा का लक्षण। कुछ बात हो जाए, देखो एक प्रैक्टिकल चीज बहुतों के साथ होती और होगी कि जब सामने बुरे सीन देखेंगे, विनाश काल में तो देखेंगे ना, बाबा ने कह दिया है मुर्दों के ऊपर से चलना पड़ेगा, चलेंगी माताएं? अभी घर से आपको थोड़ा सा आगे जाना है दूध लेने, उधर दूध है, बीच में मुर्दे ही मुर्दे हैं, रास्ता भर गया मुर्दों से, ऊपर से जाएंगे या कहेंगे इन्हें हटाओ फिर जाएंगे? तो ये सीन जब मनुष्य देखेगा खून रेजी के, तो उसके मानस पटल पर ये छपते जाएंगे, इफेक्ट होगा दिमाग पर, किसको नींद नहीं आएगी, नींद में वही वही दिखाई देगा। शक्तिशाली आत्मा इस तरह से बुरे प्रभाव में नहीं आएंगी, उनमें साक्षी भाव हो जाएगा, उनमें डर भी नहीं रहेगा। डर ये कि कोई कुछ कर न दे, कोई मार न दे, चोरी न कर ले, हमारा नुकसान न कर जाए। विनाश काल में तो बहुत होगा ना, जब भोजन नहीं मिलेगा तो लोग क्या करेंगे? देखो यहाँ हमारे यहाँ आबू में हुआ था, कोर्ट ने माइंस बंद करा दी थी कुछ, तो 80,000 लोग बेकार हो गए थे, नौकरियां चली गई थी, मजदूर थे बेचारे। तो हमें रात को नीचे से ऊपर आना इम्पॉसिबल, बंद ही कर दिया था, चोरी लूटते थे रास्ते में, जो भी कार आएगी उसको रोकेंगे और कुल्हाड़ी रखते थे, कोई कोई तीर भी ले आते थे, आना जाना मुश्किल हो गया था। कोर्ट तक ये बात पहुंची, सरकार ने पहुंचाई, फिर फैसला हुआ, खुला, शांत हो गया। तो जब खाने को मनुष्य नहीं मिल मनुष्य को नहीं मिलता तो वो कुछ भी करने को तैयार रहता है। तो आत्मा निर्भय होगी और जब हम निर्भय होंगे तो हमारे वाइब्रेशंस बहुत काम करेंगे। शक्तिशाली आत्माएं भूत प्रेतों से भी नहीं डरेंगी। वो डरेंगे, ठीक कहा आपने, वो डरेंगे। हाँ, जो पावरफुल हैं, मास्टर सर्वशक्तिमान हैं, उनसे चार ओर जो लाल किरणें फैलेंगी वो भूतों को अग्नि दिखाई देगी। जल जाएंगे हम यहां जाएंगे तो, ये सच्ची बात है। इसलिए हमें मास्टर सर्वशक्तिमान के स्वमान को बहुत ज्यादा बढ़ाना है। इस स्वमान से अनेक समस्याएं स्वतः ही नष्ट हो जाएंगी। किस तरह? ये बाबा का महावाक्य है। जो बच्चे मास्टर सर्वशक्तिमान के नशे में रहते हैं विघ्न और समस्याएं उनके पास आ नहीं सकती। सीखना है सभी कन्याओं को जो टीचर बनने वाली हैं। इस स्वमान में रहेंगे विघ्न समस्याएं आएंगी, नहीं तो कहेंगे वहां बहुत विघ्न है, वहां ऐसा है, वहां वैसा है। इन विघ्नों का समाधान हमारे पास है मास्टर सर्वशक्तिवान। विघ्न आप ही नष्ट हो जाते हैं। अभिमान भी नष्ट होगा तो निर्माणता आती जाएगी और जहां नम्रता निरहंकारिता है वे आत्माएं बाबा को बहुत बहुत प्रिय हैं, बहुत बहुत। शिव बाबा भी पूरा निरहंकारी, जो विश्व का मालिक है, सृष्टि का बीज है, त्रिकालदर्शी है, ज्ञान का सागर, सर्वशक्तिमान, सबसे ज्यादा निरहंकारी। और दूसरा निरहंकारी कौन देखा? ब्रह्मा बाबा। दोनों सबसे बड़ी हस्तियां और सबसे अधिक निरहंकारी। उनके वेट में तो हमारे पास कुछ भी नहीं है जिसका अहंकार करें। अहंकार मनुष्य को कुछ प्राप्तियों का, कुछ गॉडली गिफ्ट का होता है ना, हमारे पास तो उसकी भेंट में कुछ नहीं है। जो कुछ है वो गीत में भी था, जो कुछ है वो प्रभु देन है, उसकी गिफ्ट है। तो निरहंकारी स्वमान से बनते जाएंगे। लेकिन हमें ध्यान भी देना है कि किसी भी चीज का अभिमान हमारे पास ना आए, मैंपन हमारा छूटता चले। मैंने किया, ये क्वालिटी मेरी है, ये भी नहीं। मैंने वो गीता का एक महावाक्य पढ़ता था जिसका अर्थ मुझे समझ में नहीं आता था। छोटे हे अर्जुन, जो मनुष्य सोचता है मैंने इतने यज्ञ किए हैं, अब मैं आगे इतने यज्ञ करूंगा, मैंने इतने भूखों को भोजन खिलाया है, आगे इतने भूखों को भोजन खिलाऊंगा, ये भी उसके रजो प्रधान कर्म है। मैं सोचता था वे सतो प्रधान कौन से हुए, क्यों रजो प्रधान हो गए ये? मैं आ गया, मैं किया, मैं करूंगा। कई लोग अच्छे काम करते हैं नाम के लिए। धर्मशाला बनवाते थे पहले तो बड़े बड़े अक्षरों में नाम लिखा जाता था, ठीक है, नाम पहचान के लिए भी लिखा जाता है, लेकिन कुछ और भी तो लिख सकते हैं ना। तो इससे सूक्ष्म अभिमान रहता है, मैंने किया, मैंने ये बड़े बड़े काम किए, मैंने इतना दान किया, मैं दानवीर हूं। तो इससे उसकी शक्ति कम हो जाती है। एक स्वमान हमें आजकल बहुत बढ़ाना है जिसकी बाबा बहुत चर्चा कर रहे हैं। बोलो राजीव। मैं पूर्वज हूं। पूर्वज माना सबसे बड़े, सबसे बड़ा शिव बाबा, उसके बाद हम पूर्वज। मैं पूर्वज हूं, बहुत बड़े। पूर्वजों का काम है विश्व कल्याण करना, पालना करना, देना सबको। तो बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे जो बहुत अच्छे योग करने वाले हैं। इस स्वमान में स्थित होकर मैं पूर्वज हूं, सबको वाइब्रेशंस दिया करें थोड़ा समय भी। 10-15 मिनट भी सबको वाइब्रेशंस दिया करें, ये हमारी बहुत बड़ी सेवा होगी। तो हमें स्वमानधारी बनना है। तीसरा स्वमान ले लें जो हमें सावधान करता है। कुछ स्वमान हैं जो हमें बहुत ऊंचा उठाते हैं, कुछ स्वमान हैं जो हमें जागृत रखते हैं। मैं सृष्टि का आधार मूर्त हूँ, उद्धार मूर्त भी हूँ। दोनों पे चर्चा बहुत कम होती है। आधार फाउंडेशन है, हम जड़े हैं। हम जो हमारी स्थिति होगी उसका संपूर्ण प्रभाव पूरे कल्प वृक्ष में, पूरी सृष्टि में फैलता है। ये हमारी जिम्मेदारी हो गई। हमें जरा इम्प्योरिटी आई, अनेकों को दुख होगा, संसार में कष्ट होगा। हमारे प्योर वाइब्रेशंस अनेक आत्माओं को सुख शांति प्रदान करेंगे। हमारे प्योर वाइब्रेशंस अनेकों को, गहरी बात है, हमारे प्योर वाइब्रेशंस जो पूरे कल्प वृक्ष में फैलेंगे, अनेकों को निष्पाप होने की प्रेरणा देंगे। पाप बहुत कर रहे हैं ना लोग, और खुले दिल से कर रहे हैं, समझते नहीं है कि वो पाप कर रहे, इसका फल भी भोगना पड़ेगा। उन्हें पाप से घृणा आएगी, निष्पाप होने की प्रेरणा आएगी। तो हम सृष्टि के फाउंडेशन हैं। हम हिले तो पूरा कल्प वृक्ष हिलेगा, बिल्डिंग हिलने लगेगी, गिरेगी नहीं पर हिलने लगेगी। तो ये हमें हमारी जिम्मेदारियों का एहसास कराता है, चुस्त रखेगा। और हम हैं उद्धार मूर्त। उद्धार मूर्त का अर्थ है सबको गति सदगति का मार्ग बताने वाले, देने वाला बाबा, मार्ग बताने वाले हम उसके बच्चे। बाबा की मुरली एक आ रही, उसमें बाबा कह रहे थे मैं तुम्हें घर ले जाता हूँ। ये तो रोज ही कहते हैं, जहाँ जाने के लिए तुम जन्म जन्म भक्ति में कितनी मेहनत करते आए। मुक्ति के लिए मेहनत होती थी ना, और यहाँ बाबा फर्श से मुक्ति दे देता है। तो हम सभी बहुत जिम्मेदार आत्माएं हैं, सबके उद्धार करने की, कल्याण करने की जिम्मेदारी भी हमारी है, सबके दुख हरने की जिम्मेदारी भी हमारी है। हम अपने वाइब्रेशंस देकर सबके दुख हरेंगे। और लास्ट बात, ऐसा समय आने वाला है जब इस संसार में दुख इतना फैलेगा कि दुखी आत्माएं खुद कुछ नहीं कर पाएंगी, वो हमारी ओर प्यासी नजरों से देखेंगी। हमें वाइब्रेशंस फैलाकर सबके दुख हरने होंगे। तैयार करें माताएं, समझती हैं करेंगी ये महान काम। अपने को भूलना पड़ेगा, विश्व कल्याण की सेवा में लगना पड़ेगा। और लगेंगे वही जिनका योग बहुत अच्छा होगा। तो सभी स्वमान को बढ़ाते चले, स्वमानधारी होते चले। स्वमान हमारा जीवन, उससे विचार महान होंगे, बोल सुंदर सुखदायी होंगे, कर्म भी श्रेष्ठ हो जाएंगे, और हम अपने लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ेंगे। ओम शांति।